السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين. پاکستان سے انگلستان کی طرف عارضی ہجرت کرنے کے بہت سے فوائد ایسے تھے جو رفتہ رفتہ روشن ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اہمیت واضح ہوتی چلی گئی. ان بہت سے فوائد میں سے جو خدا کی تقدیر کے مطابق ہمیں لازماً اس طرح عطا ہونے تھے جیسے بچے کو دوا دی جاتی ہے اور اس کی شفا کے لیے, اس کی زندگی کے لیے, اس کی بقا کے لیے وہ دوا ضروری ہوا کرتی ہے, ہر کیسی ہی کڑوی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس طرح ہمیں رحمتیں گھوٹ گھوٹ کے پلائیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض خدمت کے ایسے میدان नजर के सामने उभरे जिनकी तरफ पहले कोई तवज्जो नहीं थी। मसलन एक लंबा अरसा गुजरने के बावजूद मशरिकी दुनिया जो इश्तराकी दुनिया कहलाती है, यानी मशरिक का वो हिस्सा जो इश्तराकियत के कब्जे में है, उसमें बसने वाले अरबों इंसानों के लिए हमने कोई तैयारी न की थी। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्हामन ये खुशखबरी अता फरमाई थी कि मैं तुझे रूस में इस कसरत से मुसलमान अता करूँगा। कि आपने उस नज़ारे को यूं बयान फरमाया जैसे रेत के ज़र्रे हों, और उसके अलावा रूस का आसा आपके हाथों में थमाया गया जो रोया में यूं मालूम हुआ जैसे उसके अंदर दो नाली बंदूक होती है, यानी आसा ऐसा जो दूर मार हो और दूर असर हो। जब तक इंग्लिस्तान आने की तकदीर या इंग्लिस्तान लाए जाने की तकदीर जाहिर नहीं हुई, इन अमूर पर नज़र इन मानों में तो थी कि ये खुदा की तरफ से अता करदा खुशखबरियाँ थीं, और हर अहमदी का दिल मुतमइन था कि यकीनन ये पूरी होंगी। लेकिन कैसे होंगी, और इन्हें पूरा करने के लिए मोमिन को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए वो हम कैसे अदा करेंगे, इन चीज़ों पर नज़र नहीं थी, ना उन हालात में हो सकती थी। यहाँ आने के बाद सबसे पहले कामों में से एक ये काम करने की तौफीक मिली कि इस इश्तराकी मशरक़ की दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी ज़बानों में इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए छोटे छोटे रिसाले और किताबें तैयार होना शुरू हुई, और क़ुरान करीम के बाज़ मुकम्मल तर्जमे इन ज़बानों में करने की तौफीक मिली, और बाज़ ज़ुबानों में इक्तिबासात शाया करने की तौफीक मिली। इसी तरह अहादीस नबविया में से मुंतखब अहादीस जो हमने सोचा कि इस ज़माने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इंसान की ज़रूरतों के लिहाज से प्यास बुझाने के लिए अहमियत रखती हैं, उनका तर्जमा करने की और उनकी इशात की तौफीक मिली। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बहुत से इक्तिबासात जो क़ुरान करीम की आयात और अहादीस के मज़मून से मुताबकत रखते थे और उन्हीं की तफसीर थे, उनको इस नुक्ता निगाह से चुनने की तौफीक मिली कि एक पढ़ने वाला जब क़ुरान करीम के मज़ामीन से गुज़र कर अहादीस के मज़ामीन से होता हुआ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इक्तिबासात तक पहुँचता है तो उसे पहली दोनों तहरीरों का ज़्यादा लुत्फ़ आने लगे और उसका ज़हन ज़्यादा उमदगी के साथ उनके मतालिब को पा सके और उसके अंदर ये एहसास कवी तर होता चला जाए कि क़ुरान करीम की तफसीर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में है और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की तफसीर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में है। तो इस तरह इनके दरमियान एक तत्बीक पैदा करने की भी कोशिश की गई, किसी हद तक उसकी तौफीक मिली और फिर इनके तराजम किए गए और किताबें इशाअत के लिए तैयार हुई। ये सब कुछ हो रहा था लेकिन कुछ इल्म नहीं था कि इन किताबों को, इस लिटरेचर को इन मुल्कों तक पहुंचाने के सामान कैसे मयसर आएंगे। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से मजामीन पर रिसाले शाया किए गए, तराजम तैयार किए गए और उनकी तबात करवाई गई। आप शायद ही अंदाज़ा कर सकें कि ये काम कितना मुश्किल था और कितना ज़िम्मेदारी का काम था, क्योंकि सही आदमी की तलाश करना और उससे राबता करना और उसको तैयार करना कि उन कुतुब का तर्जमा करे या उन रसाइल का तर्जमा करे, और फिर यह निगाह रखना कि वो तर्जमा दुरुस्त और असल के मुताबिक है, जबकि हम खुद उन जुबानों से नाबलद हैं। इसके लिए मुतबादिल माहिरीन की तलाश करना, ऐसे जिनमें से बहुतों की अरबी पर भी नज़र हो और इस्लाम की इस्तलाहात से भी वाकिफ हों, ये एक बहुत ही वसी काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने आगाज ही से इसको आसान फरमाना शुरू कर दिया। हमारे एक नौजवान इस्लामाबाद में रूसी जुबान सीख रहे थे, उनके दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाल दी कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दें। चुनाचे उन्होंने वक्फ किया और मैंने उसे कबूल कर लिया और फिर वो यहाँ इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले आए और मुसलसल उसके बाद से इस इनके ज़रिए से हमारे रابطے वसी होने शुरू हुए। पहला काम रूसी ज़ुबान में कुरान करीम के तर्जमे का काम था और इसको हम सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। अगरचे रूसी ज़ुबान, तो इनका नाम खावर साहब हैं, खावर साहब कहलाते हैं, ये रूसी ज़ुबान तो ये कुछ सीख चुके थे, लेकिन इतना अबूर कि कुरान करीम का तर्जमा कर सकें और ज़िम्मेदारी से कर सकें, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इब्तदाई कामों में मुमिद और मददगार बहुत साबित हुए। फिर अल्लाह ताला ने इसका एक और सामान पैदा फरमा दिया और ये चंद मिसालें जो आपके सामने रखता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह खुदा की तकदीर काम करती है। बंदों के हाथ हरकत तो करते हैं मगर खुदा के हाथों में, बंदों के कदम आगे तो उठते हैं लेकिन खुदा की ताकत से आगे उठते हैं, और तमाम वो अमूर जो दीन के लिए सर अंजाम देने की तौफीक मिलती है, उन पर जब आप आफाकी नज़र डालते हैं तो आपको जा बजा खुदा ताला की तकदीर कार फरमा दिखाई देती है, नज़र आने लगती है कि किस तरह किस मौके पर खुदा की तकदीर ने क्या सामान पैदा फरमाया। चुनाचे इंग्लिस्तान में, चूंकि इंग्लिस्तान में रूसी ज़ुबान का ऐसा माहिर मिलना जो अरबी का भी माहिर हो या दीनी इस्तलाहात को समझता हो, ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन एक अल्लाह ताला की शान है कि हिंदुस्तान से एक ऐसा माहिर अहमदी आलिम मिल गया जिसने रूस में रूसी ज़ुबान में पीएचडी किया था। उनके वालिद साहब इत्तेफाक से कराची उन दिनों में तशरीफ़ लाए जिन दिनों में मैं भी वहाँ गया हुआ था, और उनसे चंद मजालिस हुई, और उनका वो वैसे तो बड़े मुखलिस फिदाई आदमी थे, लेकिन उसके बाद उनके दिल में गैर मामूली तौर पर यह जज्बा पैदा हुआ कि मेरा ये बेटा जो रूसी ज़ुबान सीख के आया है ये भी दीन की खिदमत में आए। चुनाचे उन्होंने मुझे ख़त लिखने शुरू किए कि ये तो दीन से बिल्कुल बेबहरा हो चुका है और खाली होके वापस लौटा है, और मेरी बड़ी तमन्ना है कि किसी तरह ये खिदमत दीन में काम आए। चुनाचे उनके लिए दुआ की भी तौफीक मिली, उनसे राबता भी हुआ, और वो प्रोफेसर साहब खुद इंग्लिस्तान तशरीफ़ लाए, अपना वक्त वक्त किया, और उनकी काया पलट गई। वो जिनको उनके वालिद कहते थे कि मुझे इनका दिल खाली दिखाई देता है, वो नूर ईमान से भर गया, इखलास से भर गया। बहुत ही उन्होंने वक्त कुर्बान किया और लंबा अरसा यहाँ भी ठहरे और वापस जाके भी मुसलसल कुरान करीम के रूसी तर्जमे पर मेहनत की, और उसके बाद फिर हमें बाज़ प्रोफेसरों को दिखाने की तौफीक मिली ताकि वो उसे और चमकाएं और ज़ुबान के लिहाज से कुछ हुक्म रह गए हों तो उनको दूर करें। इस रंग में खुदा ताला ने हमें मुख्तलिफ तराजिम की भी तौफीक अता फरमाई, और जैसा कि मैंने मिसाल दी है खुद ब खुद सामान मुहैया फरमाता रहा है। खावर साहब कलीम खावर नाम है इनका, ये किसी और काम के सिलसिले में किसी प्रोफेसर से मिलने जाते हैं, वहाँ उनका एक दोस्त प्रोफेसर मशरक़ी यूरोप का किसी ज़ुबान का माहिर आ जाता है, तारफ होता है, तो अचानक ही उनको कहते हैं कि भाई हमें तो आपकी तलाश थी। और इस तरह एक इंसान तलाश एक इंसान की तलाश की दूसरा इंसान मदद करता चला जाता है और ये रابطे इस तरह पैदा होते चले जाते हैं गोया मुकद्दर थे मुअय्यन तौर पर उनका मंसूबा बनाया गया था। और इन सारे उमूर पर जब आप निगाह डालें तो कोई अहमक से अहमक आदमी भी ये नहीं कह सकता अगर उसके दिल में सच्चाई का शायबा हो कि ये सारे बेशुमार इत्तेफाकात हैं, ये तकदीर के तकदीर मोहरे चल रही थी। और इस थोड़े से अरसे में हैरत अंगेज तौर पर कसरत के साथ मशरकी यूरोप की जुबानों में इस्लाम का लिटरेचर तैयार करने की तौफीक मिली, रूसी जुबान में लिटरेचर तैयार करने की तौफीक मिली, चीनी जुबान में लिटरेचर तैयार करने की तौफीक मिली और हम इंतजार में बैठे रहे कि अब देखें खुदा आइंदा क्या सामान करता है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें रस्ते में हायल थी लेकिन अब देखें कि आपके देखते देखते वो दीवारें टूटनी शुरू हो गईं। जब दीवारें बर्लिन गिर रही थी और टेलीविजन पर लोग देख रहे थे और अजीब अजीब रंग में अपनी खुशियों के इजहार कर रहे थे और जोश का इजहार कर रहे थे, मेरा दिल अल्लाह की हम्द के तिराने गा रहा था, वो समझते थे कि उनकी खातिर दीवारें बर्लिन गिराई जा रही है। मैं जानता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर दीवारें बर्लिन गिराई जा रही है और अब इस्लाम के इन मुल्कों में फैलने के दिन आ रहे हैं और वो तैयारियां जो खुदा की तकदीर ने हमसे करवाई थी वो रायगां नहीं जाएंगी। उनको खुदा ताला ने इस रंग में मुकम्मल फरमाया और ऐसे वक्त में मुकम्मल फरमाया जबकि दूसरी तरफ से रोके तोड़ने के सामान भी तैयार थे। और जो ही हम यहाँ खिदमत के लिए तैयार हुए खुदा ताला ने वो हायल रोकें सारी दूर करनी शुरू कर दी। ये वो जिंदा खुदा है जो अहमदियत का खुदा है जिसने हमेशा अहमदियत की पुष्ट पनाही फरमाई है और हर कदम पर हमारी मदद फरमाई है। कौन दुनिया की ताकत है जो इस खुदा की मोहब्बत हमारे दिल से नोच कर फेंक सकती है? कौन है जो हमारे दिल में शकूक पैदा कर सकता है? हम इस खुदा की तकदीर को रोजमर्रा हमेशा जाहिर होते देखते हैं, मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होते देखते हैं, कभी कभी मुख्तलिफ बिखरी हुई सूरतों में जाहिर देखते हैं और कभी कभी उन सूरतों का इज्तमा होता देखते हैं और एक नहायत ही खूबसूरत मुनज्जम शक्ल नजर आती है इन तदबीरों की। और उस वक्त मालूम होता है कि हम जब सोए हुए होते हैं, जब हम बाज़ बातों से गाफिल होते हैं, हमारा खुदा वाकई जागता है और वाकई उन कामों को हमारे लिए करता है जिन कामों से हम गाफिल होते हैं, जिन कामों को करने की हमें ताकत नहीं होती। बस एक तरफ खुदा की तकदीर ने वो काम हमारे लिए आसान कर दिए जो काम बहुत मुश्किल थे और अब भी जब माहरीन उन बातों को देखते हैं तो यकीन नहीं करते कि इतने थोड़े अरसे में इतने हैरत अंगेज काम कैसे सर अंजाम देने की तौफीक मिली। लेकिन उनको नहीं पता कि दरअसल ये अल्लाह की कुदरत का हाथ है, उसकी मोहब्बत और राफत और शफकत का हाथ है जो हर मुश्किल को आसान करता चला जाता है। और अब जो नए सामान पैदा हुए हैं उनके नतीजे में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से अब इस्लाम के गलबे का यह दूसरा दौर बड़ी तेजी के साथ असर पजीर हो जाएगा। दूसरे दौर से मुराद आखिरीन का दौर है जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दौर है और तेजी के साथ असर पजीर होने से मुराद मेरी ये है कि अब इस रफ्तार में मजीद तेजी पैदा होगी और वो इलाके जो अब तक खाली थे और वो दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद है उन इलाकों की तादाद बाकी दुनिया के इलाकों से अगर ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं हो सकती क्योंकि इन इलाकों में सारे चीन की आबादी शामिल है, सारे रूस की आबादी शामिल है, सारा मशरक़ी यूरोप है, फिर और ऐसी मशरक़ी ताकतें हैं या मशरक़ी ममालिक हैं जो इश्तराकियत के दाम में आए हुए हैं। तो बहुत बड़ी वसी आबादी है, निस दुनिया के करीब ऐसी इंसानों की आबादियां हैं जिन तक पहले इस्लाम का पैगाम पहुंचने के कोई सामान नहीं थे। तो इसलिए जहां इन बातों को देखकर दिल शुक्र और हम से भर जाता है और यकीन हो जाता है ये काम खुदा ही के हैं, खुदा ही ने करने हैं, वहां जिम्मेदारियों का एहसास भी बढ़ता है और इंसान की ये तकदीर सामने आ जाती है कि एक बोझ उतरता है तो दूसरा सर पर आ जाता है, एक मुश्किल आसान होती है तो दूसरी मुश्किल सर पर आन पड़ती है। अब फिक्र इस बात की है कि इन नए खुलते हुए रास्तों में दाखिल करने के लिए वो कौन सी फौज है हमारे पास जिससे हम काम लेंगे, और वो कौन से ऐसे वाकफीन हैं जो इन नई जिम्मेदारियों को अदा करने की अहलियत रखते हैं। सरदस्त तो हमारे पास इन जुबानों के ऐसे माहरीन नहीं हैं जो वहाँ पहुँचकर खिदमतें सर अंजाम दे सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पहले दौर में तो हमें इशात लिटरेचर के ज़रिए वहाँ दिलों को आमादा करना होगा, और जैसा कि मैंने इससे पहले बारहा तवज्जो दिलाई है, बाहर की दुनिया के वो लोग जिन में इन मुल्कों के बाशिंदे नक़ल मकानी करके बस चुके हैं, उनका बहुत बड़ा काम है कि इनसे रवाबित पैदा करें, इनसे ताल्लुकात बढ़ाएं, और इन्हीं में से वो मुजाहिदीन तलाश करें जो खुदा ताला के फजल और रहम के साथ अपने अपने ममालिक में खिदमत दीन के जज्बे से भर जाएं और अपनी ज़िंदगियां पेश करें। फिर उनको थोड़ी बहुत तालीम देकर जिस हद तक भी उनकी इब्तदाई जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए ज़रूरी है हम उनको अपने अपने वतनों में वापस भिजवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो वाकफीन नौ की फ़ौज है उस पर आइंदा 20 साल तक बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पड़ने वाली हैं, और इस पहलू से मैं जमात के उस हिस्से को नसीहत करता हूं जिसको खुदा ताला ने वक्फ़ नौ में शमूलियत की तौफीक अता फरमाई कि वो तहरीक जदीद की हदायात के मुताबिक अपने बच्चों की तैयारी में पहले से ज़्यादा बढ़कर संजीदा हो जाएं और बहुत कोशिश करके उन वाकफीन को खुदा ताला की राह में अजीमुशान काम करने के लिए तैयार करना शुरू करें। बच्चे तैयार करना खुदा की खातिर उससे बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है जितना लोग ईद पर कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करते हैं, और मैंने देखा है हमारे मुल्क में तो ये रिवाज है कि बाद लोग दूसरी नेकियां कुछ करें या ना करें, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ईद के लिए कुर्बानी के लिए मेंढा बड़े प्यार से पालते हैं और बहुत बहुत उस पर खर्च करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे भी हैं जो मज़दूर भी जो अपने बच्चों का पेट पूरी तरह पाल नहीं सकते लेकिन अपने मेंढे को चने ज़रूर खिलाएंगे क्योंकि वो समझते हैं ये खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए पेश करना है, और फिर उसे सजाते हैं और उस पर कई किस्म के जेवर डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं, रंग देते हैं उसको मुख्तलिफ रंग में, और जब वो कुर्बानी के लिए लेके जाते हैं तो बहुत ही सजा कर जिस तरह दुल्हन जा रही हो इस तरह वो सजा कर लेके जाते हैं। ये बच्चे कुर्बानी के मेंढे से बहुत ज़्यादा अजमत रखते हैं और इनके माँ बाप को उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से इनको खुदा के हुजूर पेश करना चाहिए, जितनी मोहब्बत से एक बकरा ज़िबा करवा करने वाला खुदा की राह में बकरा ज़िबा करने वाला उसकी तैयारी करता है या मेंढे की तैयारी करता है। इनका जेवर क्या है? वो तकवा है, तकवा ही से सजाए जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि इन वाकफीन नौ को बचपन ही से मुत्तकी बनाएं और इनके माहौल को पाक और साफ रखें, इनके सामने ऐसी हरकतें ना करें जिनके नतीजे में इनके दिल दीन से हटकर दुनिया की तरफ मायल होने लग जाएं। पूरी तवज्जो इन पर इस तरह दें जिस तरह एक बहुत ही अजीज चीज को एक बहुत अजीम मकसद के लिए तैयार किया जा रहा, और तकवा इस तरह इनके दिल में भर दें कि फिर ये आपके हाथ में खेलने की बजाय बराह रास्त खुदा के हाथ में खेलने लगे। और जिस तरह एक चीज़ दूसरे के सुपुर्द कर दी जाती है, तकवा एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप ये बच्चे शुरू ही से खुदा के सुपुर्द कर सकते हैं, और दरमियान के सारे वास्ते और सारे मराहल हट जाएंगे। रस्मी तौर पर तहरीक जदीद से भी वास्ता रहेगा اور نظام جماعت سے بھی واسطہ رہے گا, مگر فی الحقیقت بچپن ہی سے جو بچے آپ خدا کی گود میں لا ڈالیں, خدا خود ان کو سنبھالتا ہے, خود ہی ان کا انتظام فرماتا ہے, خود ہی ان کی نگہداشت کرتا ہے, جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا نے نگہداشت فرمائی. آپ لکھتے ہیں, ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے, ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے, گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار. آپ نے یقیناً بڑی وسیع نظر سے اور گہری نظر سے اپنے ماضی کا مطالعہ کیا ہوگا, تب جا کر اس شعر کا مضمون آپ کے دل سے ہویدہ ہوا ہے, ظاہر ہوا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا بچپن میں دودھ پیتے کے زمانے تک بھی, جہاں تک یادداشت جاتی ہو, کہ ابتدا ہی سے خدا کا پیار دل میں تھا, خدا کا تعلق دل میں تھا, ہر بات میں خدا حفاظت فرما رہا تھا, ہر قدم پر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا تھا. اور جس طرح ایک طفل شیر خار ماں کی گود میں ہوتا ہے, حضرت وسیم عود علیہ السلام والسلام عرض کرتے ہیں کہ اے خدا, میں تو ہمیشہ تیری گود میں رہا, بس ان بچوں کو خدا کی گود میں دے دیں, کیونکہ ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں اور کام بہت زیادہ ہیں. ہماری تعداد کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی ان قوموں کی تعداد کے مقابل پر جن کو ہم نے اسلام کے لیے فتح کرنا ہے. ہماری عقلیں, ہمارے علوم, ہماری دنیاوی طاقتیں ان قوموں کی عقلوں اور علوم اور دنیاوی طاقتوں کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی جن کو ہم نے خدا کے لیے فتح کرنا ہے. بس ایک ہی راہ ہے اور صرف ایک راہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو اور اپنے واقفین کے وجود کو خدا کے سپرد کر دیں اور خدا کے ہاتھوں میں کھیلنے لگیں. امر واقعہ یہ ہے کہ کوئی چیز خواہ کیسی بھی کمزور کیوں نہ ہو, اگر وہ طاقتور کے ہاتھ میں ہو تو حیرت انگیز کام دکھاتی ہے. کوئی چیز کیسی ہی بے عقل کیوں نہ ہو, اگر صاحب فہم و عقل کے ہاتھ میں ہو تو اس سے عظیم الشان کام لیے جا سکتے ہیں. ہم تو محض مہرے ہیں, اور اس حیثیت کو ہمیشہ سمجھنا اور ہمیشہ پیش نظر رکھنا احمدی کے لیے ضروری ہے. آپ نے دیکھا نہیں, شطرنج کھیلنے والے ان مہروں سے کھیلتے ہیں جن میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر تک جا سکے. عقل کا کیا سوال, شعور کا ادنا احساس بھی موجود نہیں ہوتا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ کس گھر میں جانا ہماری بقا کے لیے ضروری ہے اور کس گھر میں جانا شکست کا اعلان ہوگا. بے جان بے طاقت مہرے جو ہل بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے, اور ایک صاحب فہم اچھا شاطر شطرنج کا ماہر ان کو اس طرح چلاتا ہے کہ بڑے سے بڑے عقل والوں کو بھی شکست دے دیتا ہے. اور شکست اور فتح کا فیصلہ ان بے جان مہروں کی بساط پر ہو رہا ہوتا ہے جو نہ طاقت رکھتے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں. بس خدا کے عظیم کام بھی اسی طرح چلتے ہیں. ہم ان بے جان مہروں کی طرح ہیں, ہمارے سامنے بھی کچھ مہرے ہیں, لیکن ان مہروں کی طاقت شیطان کے ہاتھ میں ہے, بے خداؤں کے ہاتھ میں ہے. اور کچھ مہرے ایسے بھی ہیں جو خود خدا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, اور خود چلتے ہیں اور خود سوچنے بھی طاقت رکھتے ہیں. اس کے مقابل پر ہم وہ بے جان مہرے ہیں جن میں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی دماغ ہے, مگر ہم اپنے خدا کے ہاتھ میں ہیں. یہ احساس انکساری جو سچا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انکساری کی خاطر گرا کر پیش کی گئی ہو. امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے مقابل پر ہماری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. ہاں, خدا اگر ہم چاہے اور وہ ہم سے کام لینا شروع کرے اور ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں, تو یہ شطرنج کی بازی یقیناً اسلام کے حق میں جیتی جائے گی. کوئی دنیا کی طاقت اس بازی کو الٹا نہیں سکتی اسلام کے خلاف. اس پہلو سے ان بچوں کی تیاری کی ضرورت ہے, ان کو خدا کے سپرد کریں. اور جہاں تک تحریک جدید کا ان پر نظر رکھنے کا تعلق ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, ان کو میں نے ہدایات دی ہیں, وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ اس تیاری میں دیر نہ کر دیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی تو چھوٹے بچے ہیں, اب انہوں نے بڑے ہونا ہے. حالانکہ بچپن ہی سے بچوں کو سنبھالیں گے تو وہ سنبھالے جائیں گے. جب غلط روش پر بڑے ہو گئے تو اس غلط روش کو بعد میں درست کرنا بہت ہی محنت کا اور جان جوکھوں کا کام بن جاتا ہے. یہ وقت ہے کہ نرم نرم جب یہ نرم نرم کونپلے ہیں, اس وقت ان کو جس ڈھب پر چاہیں یہ چل سکتی ہیں. اس وقت ان کی طرف توجہ کریں اور اس وقت ان کو سنبھالیں, اور ساری دنیا میں ہر واقف زندگی پر, جماعت کے نظام کی واقف نو کی زندگی پر جماعت کے نظام کی نظر رہنی چاہیے, اور ان کے والدین سے رابطے ہونے چاہیے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک زندہ نظام کے ہاتھ میں ہیں جس کے ذریعے خدا کی تدبیر کار فرما ہے, خدا کی تقدیر کار فرما ہے. یہ احساس بہت ضروری ہے. یہ احساس تبھی پیدا ہوگا جب تحریک جدید کا مرکزی نظام ان لوگوں سے فعال اور زندہ رابطے رکھے گا اور خبریں لے گا کہ بتاؤ خدا کے اس بچے کا کیا حال ہے جو تم نے خدا کے سپرد کر دیا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے, تمہارے گھر میں خدا کا مہمان ہے, ویسے تو سب خدا کے ہیں لیکن ایسا مہمان ہے جس کو خدا کے لیے تم تیار کر رہے ہو. کیا سوچ رہے ہو, کس طرح ان کی پرورش کر رہے ہو, ہمیں بتایا کرو, ہمیں اس کے حالات سے باخبر رکھو, اس کی صحت سے باخبر رکھو, اس کے چال ڈھال, اس کے انداز سے باخبر رکھو, اور باقاعدہ ان کو ہدایتیں دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس بچے سے یہ کام لو اور اس بچے سے یہ کام لو. اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے خصوصیت سے جو مغربی دنیا میں وقف ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دوسری دنیا کے بچوں کے مقابل پر یہ بہت زیادہ سہولت حاصل ہے کہ وہ مختلف زبانیں سیکھ سکیں. زبانیں سیکھنا بہت مشکل کام ہے اور بچپن ہی سے شروع ہونا چاہیے, اور زبانیں سکھانا بھی بہت ہی مشکل کام ہے, اور بڑے بڑے ماہرین کی ضرورت ہے جنہوں نے زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر رکھی ہوں, اور بڑی بڑی وسیع تحقیقات میں وہی نہیں بلکہ ان کے بہت سے ساتھی بھی ایک لمبا عرصہ تک مصروف رہے ہوں. ایسی سہولتیں مغرب کے ترقی یافتہ ممالک میں میسر ہیں. اس پہلو سے تحریک جدید کو چاہیے کہ مشرقی یورپ اور اشتراکی دنیا کے ان ممالک کے لیے جہاں عموماً مغربی زبانیں بولی جاتی ہیں, اور پھر چین کے لیے اور دوسرے کوریا, شمالی کوریا اور ویتنام وغیرہ کے لیے جہاں مشرقی زبانیں بولی جاتی ہیں, معین طور پر بچوں کو ابھی سے نشان لگا دیں, جس کو انگریزی میں ایئر مارک کرنا کہتے ہیں, اور اگر فی الحال ان کی نظر میں 10 کی ضرورت ہے تو 20 یا 30 تیار کریں. اب یہ تو اعداد و شمار دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ کس ملک کے لیے کتنے بچے تیار کیے جا سکتے ہیں, لیکن ابھی سے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا اگر پولینڈ کے لیے ہم نے کچھ تیار بچے تیار کرنے ہیں تو ایسے ممالک سے جہاں پولش زبان سیکھنے کی سہولت ہے واقفین بچے لینے چاہیے. جرمنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کافی تعداد میں موجود ہے, اور جرمنی کی جماعت چونکہ اللہ کے فضل سے قربانی میں بھی بہت پیش ہے, وہاں ایک بڑی تعداد ایسے جوڑوں کی ہے جنہوں نے اپنے بچے وقف کیے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ایسے بچوں سے جو کسی خاص زبان سیکھنے کی سہولت رکھتے ہوں وہی کام لینے چاہیے جو ان کے مناسب حال ہیں. اس پہلو سے اور بھی بہت سی ایسی زبانیں ہیں جن کا جرمنی سے تعلق ہے, اور جرمن قوم ان سے پرانے تاریخی روابط رکھتی ہے. پھر انگلستان میں بھی بہت سی زبانوں میں سیکھنے کا انتظام ہے, یہاں بھی کچھ بچے خاص زبانوں کے لیے تیار کیے جا سکتے ہیں. شمالی یورپ میں, اسکینڈینیویا میں بھی بعض خاص زبانوں کے سیکھنے کا انتظام باقی لوگوں سے باقی جگہوں سے زیادہ ہے, وہاں خصوصیت سے بعض گروہ بعض خاص ملکوں کے لیے تیار کیے جا سکتے ہیں. غرض یہ کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو عمومی نظر سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, تفصیلی نظر سے سب بچوں پر نظر ڈالتے ہوئے لڑکوں پر اور لڑکیوں پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے فلاں ملک کے لیے 10 یا 20 یا 30 واقفین زندگی تیار کرنے ہیں. ان میں سے اتنی لڑکیاں ہوں گی جو علمی کاموں میں گھر بیٹھے خدمت دین کر سکتی ہوں, ان کو اس خاص طرز سے تیار کرنا ہوگا. اتنے لڑکے ہوں گے جن کو ہم نے ان میدانوں میں آگے جھونکنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ. پھر ان کو صرف وہی زبان نہیں چاہیے جس زبان کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے, بلکہ اردو زبان کی بھی شدید ضرورت ہوگی, تاکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لٹریچر خود اردو میں پڑھ سکیں. عربی زبان کی بنیادی حیثیت ہے کیونکہ قرآن کریم اور احادیث نبوی عربی میں ہیں, عربی زبان بھی سکھانے کی ضرورت پڑے گی. بس تین زبانوں تو ایک ایسی تو کم سے کم ہیں, یعنی اس کے علاوہ کوئی زبان سیکھے تو چاہے جتنی چاہے سیکھے, لیکن تین زبانوں سے کم کا تو سوال ہی نہیں. اس لیے یہ بھی بتانا ہوگا کہ جہاں تم پولش سیکھ رہے ہو یا ہنگیرین سیکھ رہے ہو یا چیکوسلواکین سیکھ رہے ہو یا پولش سیکھ رہے ہو یا رومانین سیکھ رہے ہو یا البینین سیکھ رہے ہو, ساتھ ساتھ لازماً تمہیں اردو اور عربی بھی سیکھنی ہوگی. اور اس کے بھی جہاں تک میرا علم ہے ان ممالک میں انتظامات موجود ہیں, اگر نہیں ہیں تو تحریک جدید کو تو میں آغاز ہی سے یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اردو اور عربی سکھانے کے لیے ویڈیو کیسٹس تیار کریں, اور آسان طریق پر ایسی ویڈیو تیار کریں جن کا جماعت کے لٹریچر سے تعلق ہو اور اسلامی اصطلاحیں اس میں استعمال ہوتی ہوں. کیونکہ اگر ہم بازار سے بنی بنائی زبانیں سیکھنے کی ویڈیوز لیں یا آڈیو کیسٹس لیں تو جو زبان اس میں سکھائی جاتی ہے وہ اکثر ہمارے کام کی نہیں ہے. اس میں یہ تو آپ بتا وہ تو یہ بتائیں گے کہ پور کس طرح مانگا جائے گا اور شراب کس طرح مانگی جائے گی اور ہوٹل میں کس طرح جا کے ٹھہرنا ہے اور ناچ گانے کے گھروں کی تلاش کس طرح کرنی ہے. روزمرہ کی اپنی زندگی کے مطابق انہوں نے زبان سے بنائی ہوئی ہے, اس زبان سے ہمارے بچوں کو تبلیغ کرنے کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے زبان کا ڈھانچہ تو وہ سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس زبان کو معنی خیز الفاظ سے بھرنے کا کام لازماً جماعت کو خود کرنا ہوگا, اور وہ ایک خاص منصوبے کے مطابق ہوگا. تو دیر ہو رہی ہے, اب یہ بچے کھیلنے لگ گئے, ان کی بعض دفعہ تصویریں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو 4 سال پہلے بچہ پیدا ہوا تھا جو وقف زندگی تھا, اب وہ باتیں کرتا دوڑتا پھرتا اور ان کے ماں باپ بڑی محبت کے ساتھ ان کی تصویریں بھجواتے, اور بعض دفعہ وہ اپنے ہاتھ سے چھوٹے موٹے خط بھی لکھتے ہیں مجھے. بعض ایسے بھی خط لکھتے ہیں کہ شروع سے آخر تک صرف لکیریں ڈالی ہوتی ہیں اور بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے خط لکھا ہے, اور مگر بڑا مزہ آتا ہے اس خط کا, کیونکہ ایک واقف زندگی کو شروع سے ہی خلیفہ وقت سے محبت پیدا کرنے کا ایک یہ بھی گر ہے, اس کے دل میں محبت ڈالنے کا کہ ذاتی تعلق پیدا ہو جائے. بہرحال یہ کام تو ہو رہے ہیں, لیکن جلدی اس بات کی ہے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے جو ٹھوس تیاری ہونی چاہیے اس میں مجھے ڈر ہے کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں. اس لیے اس کام کی طرف توجہ ہونی چاہیے, اور جب تک تحریک جدید معین طور پر واقفین زندگی کو مطلع نہیں کرتی کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں, دو کام تو ان کو پتہ ہی ہیں, یعنی دو ہی نہیں ایک تین, اول تقویٰ کی بات میں نے کی ہے, بچپن سے ان کے دل میں تقویٰ پیدا کریں اور خدا کی محبت پیدا کریں, اور دو زبانیں جو سیکھنی ہیں عربی اور اردو وہ تو سب پر قدر مشترک ہیں, اس میں کوئی تفریق نہیں کوئی امتیاز نہیں. ہر احمدی واقف نو عربی بھی سیکھے گا اور اردو بھی سیکھے گا. اس پہلو سے جہاں جہاں انتظامات ہو سکتے ہیں وہاں وہاں وہ انتظامات کریں اور تیاری شروع کر دیں. इस मजमून पर गौर करते हुए और ये जब मैंने ये सोचा कि हम तो खुदा ताला के हाथों में बेताकत और बेअकल वो मोहरे हैं जैसे शतरंज की बाजी पे खेले जाते हैं, मुझे अपनी एक पुरानी रोया याद आ गई जिसका आजकल के हालात से ताल्लुक है। मुझे याद नहीं कि मैंने पहले आपके सामने बयान की थी या नहीं, लेकिन वो है दिलचस्प और अब उसकी जो ताबीर जाहिर हुई है वो ज़्यादा वाज़े है। जिन दिनों में ईरान का इनकलाब आ रहा था, अभी शुरू हुआ था, 1977-78 की बात है, अफगानिस्तान में तब्दीलियां पैदा हुई, ईरान में, ये उन दिनों की बात है, मैंने रोया में देखा कि मैं एक जगह नज़ारा कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद गोया मैं उस का हिस्सा नहीं हूं, मौजूद भी हूं, देख भी रहा हूं, लेकिन बतौर नज़ारे के मुझे ये चीज़ दिखाई जा रही है। गोल दायरे में, एक बड़े वसी गोल दायरे में नौजवान खड़े हैं और वो बारी बारी अरबी में बहुत ही तरन्नुम के साथ एक फिक्रा कहते हैं और फिर अंग्रेज़ी में गाने के अंदाज में उसका तर्जमा भी उसी तरह तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं और बारी बारी इस तरह अदलता बदलता है मंजर, पहले अरबी फिर अंग्रेज़ी। और वो फिक्रा जो उस वक्त यूँ लगता है जैसे कुरान करीम की आयत है, ला यालमु इल्ला हु, कोई नहीं जानता सवाय उसके। और ये जो मजमून है ये इस तरह मुझ पर खुलता है कि नज़ारे दिखाए जा रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा है मैं वहाँ हूँ भी और नहीं भी, एक पहलू से सामने ये गा रहे हैं नौजवान, और फिर मेरी नज़र पड़ती है इराक़ की तरफ, शाम मुझे याद है, इराक़ याद है, और फिर ईरान की तरफ, फिर अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, मुख्तलिफ़ मुल्क बारी बारी सामने आते हैं और मज़मून दिमाग में ये खुलता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, जो अजीब वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जो इनकलाबात आ रहे हैं, इनका आखिरी मकसद सवाए खुदा के किसी को पता नहीं। हम इनको इत्तिफाकी तारीखी हादसात के तौर पर देख रहे हैं, हम समझते हैं कि इत्तफाकन रूनुमा होने वाले वाक़यात हैं, मगर रोया में जब वो ये मिलके गाते हैं तो उससे ये तासुर ज़्यादा कवी होता चला जाता है कि ये इत्तेफाकन अलग अलग होने वाले वाक़यात नहीं हैं, बल्कि वाक़यात की एक जंजीर है जो तकदीर बना रही है और हम देख रहे हैं मगर हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ला यालमु इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, जिसका हाथ ये तकदीर बना रहा है। तो ये वो रोया थी जो चौधरी अनवर हुसैन साहब उन दिनों में तशरीफ लाए, उनको भी मैंने सुनाई, बाद और दोस्तों को भी, कि ये कुछ अजीब सी बात है। मालूम होता है कोई बड़े बड़े अजीम वाक़यात इन वाक़यात के पसपर्दा रूनुमा होने वाले हैं, इनके पीछे पीछे आएंगे। हम जो अंदाजे कर रहे हैं सियासी, ये कुछ और हैं, जो असल मकासद हैं खुदा के वो कुछ और हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ रूस की तब्दील शुदा पॉलिसी का गहरा ताल्लुक है, कुछ सबक उन्होंने वहाँ सीखे हैं, कुछ और ऐसी बातें इन तजुर्बों में ज़ाहिर हुई हैं जिनके नतीजे में ये बात के अजीम इनकलाबात पैदा होने शुरू हुए। बस ये जितने भी वाक़यात आज की दुनिया में रूनुमा हो रहे हैं, एक दुनिया का मुअर्रिख़, एक दुनिया का सियासतदान उनको और नज़र से देखता है और फहम से समझता है। मोमिन के लिए तो हर उंगली खुदा की तकदीर की तरफ इशारा कर रही होती है और मोमिन इनसे और पैगाम लेता है और उन पैगामों की रोशनी में अपने आप को मुस्तैद करता है और अपने आप को तैयार करता है। बस खुदा की उंगली जो इशारे कर रही है वो अवाज़ तर होते चले जा रहे हैं और वो इशारे ये हैं कि आगे बढ़ो और सारी दुनिया को मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए फतेह कर लो, क्योंकि आज ये दुनिया अपने दरवाजे तुम्हारे लिए खोल रही है। बस ऐ इस्लाम के जवाल जियालो और ऐ खिदमत दीन का दावा करने वालों, इन मौाक़े से फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ो और तमाम दुनिया को इस्लाम और इस्लाम के खुदा के लिए सर कर लो। खुदा हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوَّ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ